नमस्कार भारत, तारीख 28 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। यूक्रेन और देश के पूर्व में मौजूद अलगाववादी विद्रोहियों ने की सैकड़ों कैदियों की अदला बदली।
There are no incidents recorded on either side of the contact line.
तीन तलाक पर काफी घमासान के बाद आज संसद में विधेयक पेश करेगी सरकार।
मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर तीन तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए।
महादई नदी जल बंटवारे पर कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तूतू मैमे। कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, अखबारों की समीक्षा भी होगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। यूक्रेन और देश के पूर्व में मौजूद अलगाववादी रूस समर्थक विद्रोहियों ने सैकड़ों कैदियों का आदान प्रदान किया है। साल 2014 में संघर्ष शुरू होने के बाद से इस तरह की ये सबसे बड़ी घटना है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत जैन इंग्लैंड ने कहा है कि उन्हें डर है कि राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में बच्चों को वहां से निकाले जाने की जरूरत है और बच्चों को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैन इंग्लैंड ने बीबीसी को बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि पूर्वी घोटा में विद्रोही गंभीर रूप से बीमार बच्चों को सुरक्षित रास्ता देने के बदले सरकारी कर्मचारियों को रिहा करने पर सहमति हुई है। सीरियन अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी ने बताया है कि मंगलवार को चार बच्चों को वहां से निकाला गया था, जिसके बाद बुधवार की रात को वहां से 12 बीमार बच्चों को निकाला गया है। रूस के मुख्य शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक सुपरमार्केट में धमाका हुआ है, जिनमें कम से कम 10 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। धमाका एक दुकान में हुआ जहां सामान रखा गया था। जांचकर्ताओं ने इस मामले को हत्या के इरादे से किया गया धमाका मानते हुए इसकी आपराधिक जांच शुरू कर दी है। सेंट पीटर्सबर्ग में जांच समिति के प्रमुख अलेक्जेंडर क्लाउस ने कहा, फिलहाल इस मामले में जांच के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के बेहद अनुभवी कार्यकर्ता और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। इस मामले में कई स्तर पर जांच और खोजबीन का काम चल रहा है और हम सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में जांच समिति के प्रमुख अलेक्जेंडर क्लाउस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मोरक्को के जेर्दा शहर में सालों से खाली पड़े एक कोयला खदान में दो भाइयों की मौत के बाद लोगों ने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किए। हाथों में मोरक्को के झंडे लिए हुए हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने सरकार पर इलाके को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बेरोजगारी के कारण कई लोगों को इन बंद पड़े खदानों में काम की तलाश के लिए जाना पड़ता है। हम इस शहर में रह रहे हैं, सरकार हमारी ओर और हमारी बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जेर्दा का यह हुआ जिसकी पहचान पत्र उसके नाम के सामने FH लिखा है, उसे काम नहीं मिल रहा है। मालिक लोग शहर के बाहर से काम पर लोगों को रख रहे हैं, लेकिन हमें काम नहीं दे रहे हैं। कोयला पर आधारित पावर स्टेशनों के कारण हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। हमारे बिजली और पानी के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और इसका असर सीधा हम पर पड़ रहा है, और यही कारण है कि हमें आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। जेर्दा में रहने वाले एक युवक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण नाइजीरिया में एक जेल तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने के आरोप में चार कैदियों की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने बताया है कि अक्वाइबोम राज्य के इकोटेकपीन जेल में कैदियों ने एक कुल्हाड़ी से रसोई के कर्मचारियों पर हमला किया और फिर जेल का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। जेल से भागने की कोशिश कर रहे चार कैदियों को मार दिया गया है, जबकि सात कैदियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस के अनुसार 36 अन्य कैदी जेल से भागने में कामयाब रहे हैं। सुरक्षा बलों ने फिलहाल उनकी तलाशी के लिए खोज अभियान चलाया हुआ है। मानवाधिकार समूहों ने कैदियों के लिए बेहतर परिस्थितियों की अपील की है और कहा है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जल्द से जल्द उनकी सुनवाई की जाए। मेक्सिको के जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टल नामक ड्रग गैंग के कथित प्रमुख जोस गंजालेस वेलेंसिया को ब्राजील में गिरफ्तार कर लिया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम अंतर्राष्ट्रीय खबर से कर रहे हैं। यूक्रेन और देश के पूर्व में मौजूद अलगाववादी विद्रोहियों के बीच सफलतापूर्वक सैकड़ों कैदियों की अदला बदली हो गई है। साल 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव व्याप्त हो गया और यूक्रेन समर्थकों व रूस समर्थकों के बीच कई हिंसक झड़पें हुईं। इस बीच शांति के प्रयास भी जारी रहे, जिस पर साल 2015 में सहमति बन पाई। इसी के तहत अब कैदियों की अदला बदली की गई है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए मानसी दास से।
साल 2014 में क्राइमिया को लेकर यूक्रेन और रूस के बीच तनाव की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से पहली बार यूक्रेन और देश के पूर्व में मौजूद रूस समर्थक अलगाववादी विद्रोहियों के बीच कैदियों का आदान प्रदान हुआ है। इसे अब तक की इस तरह की सबसे बड़ी घटना बताया जा रहा है। करीब 230 लोगों को रूस समर्थक विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में पहुंचाया गया है और इसके बदले दोनिएत्स्क और लुहांस्क इलाकों में विद्रोहियों ने 74 कैदियों को छोड़ा है। यूक्रेन में रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के प्रवक्ता मिलादिन बोगेटिक ने कहा, कॉन्टैक्ट लाइन के दोनों तरफ शांति रही और कोई घटना नहीं हुई। रेडक्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी की टीम सरकारी और गैर सरकारी नियंत्रण वाले इलाकों में मौजूद थी और उन्होंने बताया है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। अदला बदली होने में कुछ देरी हुई। हमें पहले ही इस बात का अंदाजा था कि थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि 300 से अधिक कैदियों का मामला था। सभी की गिनती करना और दूसरी तरफ जाना चाहने वालों की इच्छा की पुष्टि करने में वक्त तो लगता है, लेकिन देखा जाए तो ये प्रयास सफल रहा और किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई। ये थे यूक्रेन में रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के प्रवक्ता मिलादिन बोगेटिक के शब्द। अब से दो साल पहले यानी साल 2015 की शुरुआत में रूस यूक्रेन और रूस समर्थक विद्रोहियों के बीच शांति वार्ता हुई थी, जो नाकाम रही थी। इसके बाद जर्मनी और फ्रांस की कोशिशों से शांति वार्ता दोबारा शुरू की गई, जिसके बाद सभी पक्ष मिन्स्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हुए। इसके अनुसार सभी पक्ष कैदियों की अदला बदली और स्थानीय चुनाव कराने पर राजी हुए थे। कैदियों की अदला बदली के लिए हाल में जो बातचीत हुई थी, उसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के मौजूदा राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको के साथ रूसी रूढ़िवादी चर्च के प्रमुख ने भी हिस्सा लिया था। 63 साल के इतिहासकार इगोर कुजलुविस्की को दोनिएत्स्क में विद्रोहियों ने हथियार रखने के आरोप में पकड़ा था। उन्हें शांति समझौते के तहत आजाद कर दिया गया है। उन्होंने कहा, मैं ये मानना चाहता हूं कि लोग अब इस संघर्ष से ऊब चुके हैं और उन्हें बातचीत करने के लिए सामने आना चाहिए, क्योंकि बातचीत के बिना इस संकट की गुत्थी को सुलझाने का कोई और रास्ता नहीं है। ये थे इतिहासकार इगोर कुजलोविस्की के शब्द। फरवरी 2014 में यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच यूक्रेन की राजधानी कीव छोड़कर रूस चले गए थे, जिसके बाद मार्च में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन ने इसका विरोध किया और अपनी सेना भेजी, तो रूस समर्थक विद्रोहियों ने देश के पूर्व में मौजूद शहरों दोनिएत्स्क और लुहांस्क पर कब्जा करना शुरू कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर क्राइमिया पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया, तो यूक्रेन ने रूस पर इस इलाके पर कब्जा करने का आरोप लगाया। तभी से यूक्रेन और रूस के बीच आरोपों का सिलसिला जारी है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष के कारण दोनिएत्स्क और लुहांस्क इलाके में अब तक 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
यूक्रेन और देश के पूर्व में मौजूद अलगाववादी विद्रोहियों ने की सैकड़ों कैदियों की अदला बदली।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 7565, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। तीन तलाक पर काफी घमासान के बाद आज संसद में इस विधेयक पेश किया जाना है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार इंस्टेंट तीन तलाक को लेकर काफी गंभीर रही है और उसने इसको कुप्रथा बताते हुए इसके खिलाफ विधेयक लाने की बात कही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में 3 तलाक कहे जाने को असंवैधानिक ठहराया है। आखिर किस तरह का विधेयक आज संसद में पेश किया जाएगा, सुनिए हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद से।
कोई हिंदू माँ के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, वैसे ही मेरी मुसलमान बहन उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी रैलियों और संसद में 3 तलाक के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे, तभी अंदाजा लगा लिया गया था कि इस पर कुछ बड़ा होने जा रहा है। मुस्लिम संगठनों और केंद्र सरकार के बीच काफी रस्साकशी के बाद आज संसद में 3 तलाक के खिलाफ विधेयक पेश किया जाएगा। एक बार में 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने इसको संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश करने पर विचार किया था, जो आज पूरा हो सकता है। लेकिन बिल के मौजूदा स्वरूप को लेकर कुछ मुस्लिम महिला संगठनों ने इस पर एतराज भी जताया है। उनका कहना है कि आने वाला बिल महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की जगह और कमजोर बनाने वाला है। इसको और साफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह स्पष्ट करती हैं। वह कहती हैं, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक नाम का नया बिल एक तरफ तो एक बार में 3 तलाक को गैर कानूनी करार देता है और दूसरी तरफ मुस्लिम को गुजारा भत्ता देने की भी बात करता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती हैं? केंद्र सरकार पर बिल जल्दबाजी में लाने का आरोप लगाते हुए इंदिरा जयसिंह ने कहा कि कोर्ट में 3 तलाक के केस पर सुनवाई के दौरान उनकी दलील महिलाओं को समान हक और सम्मान दिलाने की थी, लेकिन जब सरकार तलाक देने वाले पति को ही जेल भेज देगी तो शादी का रिश्ता ही नहीं बचेगा, तो फिर कैसा हक और कैसा सम्मान? इंदिरा जयसिंह बिल में मौजूद प्रावधानों को बताती हैं। उनके मुताबिक एक बार में 3 तलाक कहने वाले मर्द को 3 साल की जेल की सजा होगी। इस कानून के तहत इस जुर्म को गैर जमानती बनाया गया है। बिल में तलाकशुदा पत्नी और आश्रित बच्चे के लिए गुजारा भत्ता तय करने का अधिकार मैजिस्ट्रेट को देने की बात कही गई है। एक बार में 3 तलाक दिए जाने की सूरत में नाबालिग बच्चे का अधिकार माँ को दिया जाए। इस साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम मर्दों के एक बार में 3 तलाक कहने की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था, फिर चाहे वो ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के जरिए ही क्यों ना कहा गया हो।
तो संसद में आज 3 तलाक पर विधेयक पेश होना है और अब ये देखना होगा कि वहां किस तरह की बहस इस पर होती है। नदी जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए कर्नाटक बीजेपी द्वारा की गई कोशिशों के कारण उत्तरी कर्नाटक के कई जिलों को बंद का सामना करना पड़ा है। साथ ही इसके चलते सत्तारूढ़ कांग्रेस से बीजेपी के बीच तूतू मैमै शुरू हो गई है। गोवा व कर्नाटक के बीच महादई नदी जल बंटवारा काफी सालों से विवादों का विषय रहा है, लेकिन हाल में ही इसके चलते बीजेपी को धक्का लगा और इसको लेकर राजनीतिक लड़ाई में कई मोड़ आए। सुनिए बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
पिछले थोड़े दिनों से महादई नदी का पानी बंटवारा विवाद ने गर्मी पकड़ ली है। ये मामला दरअसल ये है, 2002 में कर्नाटका के SM कृष्णा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने यह फैसला लिया कि वो कलसा और बंदूरी ट्रिब्यूटरीज के बीच एक नाला बनाएगी ताकि वो बेलगावी, धारवाड़ और गदग जिलों को पीने का पानी दे सकें। लेकिन दूसरे विवादों की तरह ये मामला कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र के बीच ट्राइब्यूनल में पहुंच गया, लेकिन गोवा कर्नाटका से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। तो कर्नाटका के बीजेपी नेता BS येडियुरप्पा ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ एक बैठक के बाद हुबली की सार्वजनिक बैठक में ऐलान कर दिया कि पर्रिकर कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरे ही दिन उनके विरोध पक्ष और उनके साथियों के कारण पर्रिकर दबाव में आ गए। बीजेपी के पूर्व जल संसाधन मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, हमने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से ये कहा था कि हम गोवा की बीजेपी सरकार को बातचीत के लिए ले आएंगे और वो गोवा की कांग्रेस पार्टी का समर्थन मजबूत करना चाहिए। हमने हमारा वादा तो रखा है, अभी राहुल गांधी को गोवा कांग्रेस का समर्थन लाना चाहिए। ये थे बसवराज बोम्मई के शब्द। ये मामला पिछले 2 दिन में यहाँ तक पहुँच गया कि उत्तर कर्नाटका जिलों के किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने बेंगलुरु में बीजेपी के ऑफिस के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि येडियुरप्पा ने जो सार्वजनिक बैठक में कहा था उसका पालन नहीं हुआ। इसके विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें प्रमुख बीजेपी नेता आर अशोक घायल भी हो गए और उत्तर कर्नाटका के 5 जिलों में बंद बुलवाया गया। तो क्या राहुल गांधी गोवा के कांग्रेस इकाई को मंजूर करवाएंगे? कांग्रेस नेता वी एस उग्रप्पा ने कहा,
एज पर द डिसीजन रेंडर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1996,
राहुल गांधी तो बाकायदा पीने के पानी के लिए समर्थन दिलवाएंगे, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि बीजेपी इसमें राजनीति ला रही है और उनकी नजर आने वाले चुनाव पर ही है। इस विषय से तो उनको धक्का पड़ा है। ये थे वी एस उग्रप्पा के शब्द। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मदन मोहन इन सारे विषयों को अलग नजरे से देखते हैं। उन्होंने कहा,
बेसिकली
दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटका में कोई भी पानी बंटवारे के विवाद पर सरकार और विरोध पक्ष एक साथ रहते हैं, वो कावेरी हो या कृष्णा नदी का पानी का विवाद हो। मतलब ये कि चुनाव के मद्देनजर महादाई मामला राजनीतिक बन गया है। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
महादाई नदी जल बंटवारे पर कर्नाटक में कांग्रेस व बीजेपी की तूतू में। हिमाचल प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में कल जयराम ठाकुर ने शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। हमारे सहयोगी पंकज शर्मा ने राज्य के नए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की और इस बातचीत में जयराम ने कहा कि प्रदेश में न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ कर्ज में डूबे प्रदेश को बाहर निकालना उनकी प्राथमिकता होगी। सुनिए उनकी ये बातचीत।
सबसे पहले तो जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता के मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बहुत बड़ा एक जनसमर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया और जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में जो प्राथमिकताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो कर्ज तले दबा हिमाचल, इसमें से इसको बाहर निकालने में हम क्या कर सकते हैं। और सौभाग्य आज हमारा यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार से केंद्र से हम प्रदेश के लिए क्या मदद ले सकते हैं। एक तो हमारा ये लक्ष्य रहेगा, उसमें आर्थिक दृष्टि से प्रदेश को पटरी पर लाना कठिन काम है मैं जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद इस दिशा में कुछ कदम उठाएंगे। उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश की जो कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है पिछले कुछ अरसे से, जिसमें विशेष तौर से जो गुड़िया कांड जैसी प्रकार की घटनाएँ होना, जिसके कारण एक सुरक्षा का एक भाव यहाँ हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ है। खासतौर से ये देवभूमि के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में, और इस प्रकार की घटना जो घटी है उसके कारण पूरे दुनिया में हम शर्मसार हुए हैं। तो ऐसी घटनाएं आने वाले समय में ना हो, हर आदमी सुरक्षित महसूस करे, दूसरी हमारी प्राथमिकता ये है। और उसके साथ साथ में केंद्र सरकार की जो योजना है उन योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए हम काम करेंगे, ताकि हिमाचल को विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ा सके।
सर, जैसे आज हमने देखा कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल से युवा और नए चेहरे हैं, इसका राज बताइए।
नहीं, मुझे हमारा मंत्रिमंडल संतुलित है, उसमें अनुभवी लोग भी हैं, नए लोग भी हैं, और इस बात को हमको मान के चलना चाहिए कि नया दौर है और नए दौर में मुझे लगता है कि नौजवानों की और ऊर्जावान लोगों की भी सरकार बनाने में जो योजना सहयोग रहा है और चलाने में भी मुझे लगता है कि उसमें जो है उनकी भूमिका निश्चित रूप से रहनी चाहिए। इसलिए हमने एक संतुलित मंत्रिमंडल जो है केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से सहयोग से हमने बनाने की कोशिश की है, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इसका हमारे नौजवान जो जितने भी हैं, जो साथी जो कैबिनेट में हैं, वो बुजुर्ग जो हमारे खासतौर जो सीनियर कोलीग्स हैं, वो अनुभव की दृष्टि से हमको सहयोग करेंगे, और उसके साथ जो नौजवान हो वो ऊर्जा दे करके जो है उसमें सहयोग करेंगे।
तो लास्ट सवाल सर, आप किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो प्रदेश का जो किसान किस तरह से उनके लिए क्या रहेगा?
इन सारी बातों को लेकर के हमको अभी निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। क्या किया जा सकता है? जैविक खेती एक हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कि एक बहुत उस फील्ड में काम करने की बहुत जरूरत है, इसको हम प्राथमिकता देंगे।
हिमाचल के नए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात कर रहे थे पंकज शर्मा। और कार्यक्रम में अब अखबार के पन्ने पलटते हैं। मानसी, अखबार आप छान चुकी हैं, क्या कह रहे हैं अखबार आज के?
अखबारों के पहले पन्ने पर आज कुछ अखबारों पर है तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो नज़र आ रहे हैं शिमला के मॉल रोड में इंडियन कॉफ़ी हाउस में,
और जहां उन्होंने कॉफ़ी पी। नई दुनिया ने शीर्षक लगाया कि मॉल रोड के कॉफ़ी हाउस की पुरानी यादों में खोए मोदी।
जी, कुछ यही तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर भी है, और जहाँ ये राम ठाकुर जयराम ठाकुर के स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए पहुंचे थे। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर इसी के नीचे जो खबर छपी है वो आपको बता दूं, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर मोदी ने जो आरोप लगाया था इससे पहले मणिशंकर रैयर प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर, उसके बारे में जो सफाई दी है उस पर उन्होंने तंज कसा है और सोशल मीडिया पर लिखा है कि प्रिय जेटली जी, देश को ये याद दिलाने के लिए शुक्रिया कि हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं उनका कभी वो मतलब नहीं होता,
मंशा
या
नहीं
जो
होती है।
उनका मतलब होता है वो कभी वो कहते नहीं। जनसत्ता की एक खबर आपको बताऊं, इसमें छपा है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुलाकात करने के बाद कुलभूषण जाधव की पत्नी की जूतियां नहीं लौटाने पर पाकिस्तान की सरकार ने सफाई दी है। अखबार ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बयान छापा है। उनका कहना है कि जाधव की पत्नी की जूतियों में कुछ था। बयान में कहा गया है कि शक है कि जूतियों में जासूसी का कोई छोटा उपकरण लगाकर रखा गया था, शायद कोई रिकॉर्डर। जूतियों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और जिसके बाद इसे लौटा दिया जाएगा। अखबार में छपी एक अन्य खबर है शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल की, जिस पर एक बार फिर से लापरवाही का आरोप लगा है। हृदय रोग से संबंधित इलाज कराने के लिए एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो गए थे जिनकी मौत हो गई है। उनकी बेटी सारिका का आरोप है कि अस्पताल ने हमसे पूछे बिना ऑपरेशन कर उन्हें स्टेंट लगा दिया और हमें 3 लाख का बिल थमा दिया। अखबार के अनुसार सारिका ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पिता को एक ऐसे डॉक्टर की निगरानी में रखा गया था जो छुट्टी पर थे। आपको याद होगा यही अस्पताल था जो अभी हाल में महीने भर पहले जुड़वा बच्चों के इलाज में लापरवाही बरतने का इसी अस्पताल पर आरोप लगा था
और जिसमें कि जो एक बच्चा था उसको
जी। अमर उजाला के न्यूज डायरी सेक्शन में एक खबर छपी है जिसके अनुसार फेसबुक ने सोशल मीडिया पर नया अकाउंट खोलने वालों के लिए आधार को अब वैकल्पिक बना दिया है। अब फेसबुक पर नया अकाउंट खोलने वालों को वही नाम डालना होगा जो आधार कार्ड पर है। अखबार के अनुसार फेसबुक फिलहाल अपनी मोबाइल साइट के लिए इसका टेस्ट कर रहा है। एक खबर नई दुनिया से, इसके अनुसार शहरों में वाहनों के बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 11 शहरों में सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक बसों, टैक्सियों और तिपहिया वाहनों की खरीदी पर सब्सिडी देने की बात की है।
जी मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की खबरें संक्षेप में पढ़ने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद दिनों पहले 2G घोटाले में CBI की विशेष अदालत ने ए राजा, कनिमोजी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इस मामले को कोर्ट तक ले जाने वाले लोगों में से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी नाम है। सुब्रमण्यम स्वामी BBC के दफ्तर आए तो उनसे BBC संवाददाता सलमान रवि ने बात की और पूछा कि 2G मामले में क्या उनकी मेहनत पर पानी फिर गया?
नहीं, पानी अभी नहीं हुआ। आप बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं।
नहीं, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ।
कोर्ट में तो एक ही स्तर है ना। मैं जब 2G मैंने शुरू की तो हाई कोर्ट में मेरा डिसमिस हो गया था। उस समय भी ऐसे ही आप लोगों ने मुझे सवाल पूछा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ तो बहुत व्यापक हुआ। तो ये हमारी जो तीन स्तर की जो कोर्ट सिस्टम है उसमें कई एक में हार के दूसरे में जीतते हैं और गैर समझ होती है जजेस की, वो दूसरा जज उसको पहचान लेता है।
लेकिन अब क्या करेंगे?
नहीं, अपील होगा, पक्का
अपील करेंगे।
हाँ, ये तो महामूर्ख का जजमेंट है।
मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बहुत ही ताजा आपका जो है सवाल है वो है कि मुझे हंसी भी आ रही पूछते हुए कि वेस्टर्न ड्रेस इज फॉरेन इम्पोज्ड स्लाविशनेस।
हाँ,
तो मैंने भी पहन रखा है।
नहीं, मैंने मिनिस्टर्स के लिए कहा।
अच्छा, मिनिस्टर्स के लिए।
हिंदुत्व के प्रचार करते हैं तो कम से कम हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो पश्चिमी कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विदेश में जाते हैं तो उनको वेटर या बटलर समझते हैं।
सूट बूट भी पहन कर जाते हैं
जो ही बड़ा शर्म आता है हमें। क्या जरूरत है पहनने के लिए?
सूट बूट की सरकार इसीलिए बोलते हैं।
नहीं, सूट बूट वो तो दोनों तरफ होता है। मैंने राहुल गांधी को भी देखा है, आनंद शर्मा को भी देखा है, कपिल सिब्बल को भी देखा है, सब सूट बूट पहन के। ये तो हीन भावना से आई है। वो हीन, महात्मा गांधी ने क्यों कहा कि सबका ब्रिटिश कपड़े को जला दो? क्योंकि उससे हीन भावना जा सकती थी।
जो है GDP के बारे में उन्होंने कहा है कि ये फिगर्स जो है ये फज हो सकते हैं। सर, क्या कहते हैं आप इसके बारे में?
नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्मेलन में उनको संबोधित कर रहा था तो मैंने कहा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे भी आरोप लगती है कि आप फिगर्स फज करते हैं, कभी मजबूरी में भी होती है। मैं फिर मैंने बताया कि सीएसओ को फरवरी 1 तक पार्लियामेंट में पेश करने के लिए एक इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट पेश करनी है, और वो सीएसओ माने सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संगठन अच्छी तरह जानता, मेरे पिताजी उसकी संस्थापक हैं, और उस संगठन से कहा गया था कि आप हमें 1 तारीख को पार्लियामेंट में देना है, तो जो भी आपको करना करिए। तो उन्होंने 1 फरवरी को देना है तो 10 तारीख जनवरी तक तैयार हो जाना चाहिए दस्तावेज, और उन्होंने तैयार किया। तो मैंने कहा उसको तो मैंने देखा, और उसमें जो जीडीपी की कैलकुलेशन में मैंने डायरेक्टर सीएसओ को बोला,
लेकिन ये फज कैसे होता है सर, मुझे तो
नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैं तो बता ही रहा हूँ ना। मैंने देखा कि जीडीपी सितंबर से जनवरी 31 तक जो क्वार्टर है उसकी डेटा दी थी। तो अब हमारी जीडीपी में 2 प्रकार के डेटा हैं, एक हैं जिसको कहते हैं फॉर्मल डेटा, जैसे कंपनीज हैं वो चार्टर अकाउंटेंट रखते हैं, उनका रिकॉर्ड होती है सब। दूसरा है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, दुकानें हैं, कोई मोची है, तो इनकी भी जोड़ना आवश्यक होती है, उसको इनफॉर्मल कहते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में हर साल एक सर्वे करते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे। तो तब मैंने कहा कि जब सर्वे ही नहीं हुआ, आपने डेटा कैसा दिया।
अलग अलग मुद्दों पर सुब्रमण्यम स्वामी से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी सलमान रावी, और अब कार्यक्रम में खेल की खबरें सुनते हैं।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं सुमिरन प्रीत कौर। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, बात करते हैं एशेज सीरीज की। 4th टेस्ट मैच चल रहा है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। हालांकि इंग्लैंड पहले से ही ये सीरीज अपने नाम कर चुकी है 3 टेस्ट मैच जीत कर, लेकिन 4th टेस्ट मैच में इंग्लैंड क्रिकेट टीम की मजबूत पकड़ है। इसमें बड़ा श्रेय है एलेस्टर कुक और स्टुअर्ट ब्रॉड का। एलेस्टर कुक ने जहां शतक बनाया, वहीं दूसरी तरफ स्टुअर्ट ब्रॉड ने 4 विकेट लिए। एलेस्टर कुक की तारीफ करते हुए स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने बेशक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन कोशिश जारी है।
हमने धैर्य रखा, एलेस्टर कुक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बेशक इस सीरीज में हमने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना कर सकते थे, लेकिन ये क्रिकेट है, कभी भी चीजें बदल सकती हैं। आप बस इतना कर सकते हैं कि खुद पे विश्वास रखें, पॉजिटिव रहें, एटीट्यूड सही रखें और कोशिश जारी रखें, चाहे हार हो या फिर जीत।
फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चल रहा है 4th टेस्ट मैच। 5वां टेस्ट मैच होगा जनवरी 2018 में। वहीं दूसरी तरफ भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 1ला टेस्ट मैच खेला जाएगा 5 जनवरी से। पहला मुकाबला होगा केप टाउन में। भारत के साउथ अफ्रीकन दौरे में 3 टेस्ट मैच होंगे, 6 वनडे इंटरनेशनल मैच होंगे और 3 T20 मैच होंगे। जाने से पहले बात फुटबॉल की। प्रीमियर लीग में आज मुकाबला होगा क्रिस्टल पैलेस और आर्सेनल के बीच, और शनिवार को प्रीमियर लीग में ही मुकाबला होगा चेल्सी का स्टोक सिटी के साथ, लिवरपूल का लेस्टर सिटी के साथ और मैनचेस्टर यूनाइटेड का साउथहैम्पटन के साथ। स्पोर्ट्स की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
खेल की खबरें आपने सुन ली, और अब इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। यूक्रेन और देश के पूर्व में मौजूद अलगाववादी रूस समर्थक विद्रोहियों ने सैकड़ों कैदियों का सफलतापूर्वक अदला बदली कर लिया है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत जैन इग्लैंड ने कहा है कि उन्हें डर है कि राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में बच्चों को वहां से निकाले जाने की जरूरत है और बच्चों को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के मुख्य शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक सुपरमार्केट में धमाका हुआ है जिसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए हैं। मोरक्को के जिर्दा शहर में सालों से खाली पड़े एक कोयला खदान में 2 भाइयों की मौत के बाद लोगों ने लगातार दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन किए हैं। दक्षिण नाइजीरिया में एक जेल तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने के आरोप में 4 कैदियों की हत्या कर दी गई है। ग्वाटेमाला के विदेश मंत्री ने इसराइल स्थित अपने दूतावास को तेल अवीव से हटाकर यरूशलम में बनाने के अपने फैसले का बचाव किया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। शाम को 7:30 बजे दिनभर कार्यक्रम में वर्षांत कार्यक्रमों की अगली कड़ी लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। फिलहाल
मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।